बताया। इसके बाद आजू संपत्ति का विस्तार से वर्णन करके फिर फल बताया, उनके लक्षण बताए, दृष्टांत उनके सिद्धांतों का वर्णन किया। आठवें श्लोक तक फिर उस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों की बात फिर बताई, फिर उनके मनोराज्य का वर्णन किया। काम और क्रोध और अहंकार सहित जो अपने मनोराज्य, वो कामना के क्रोध के ऐसे मनोराज्य वर्णन किया। ऐसे मनोराज्य वर्णन करके अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसंगता काम भोगेशु पतन्ति नरकेशु जाओ, महान घोर नरक में भी गिरते हैं। बात ये विचार नहीं की है कि आजू संपत्ति कहाँ से पैदा होती है, ये भगवान अगर ही बताएंगे। खास बात है कि जड़ चीज जो उत्पत्ति और विनाशशील वस्तु है, उसमें हमारा आकर्षण है, बस ये ही अनर्थ की मूल है। हम जानते हैं कि शरीर उत्पन्न नष्ट होने वाले हैं, परिस्थिति उत्पन्न नष्ट होने वाली है, व्यक्ति उत्पन्न नष्ट होने वाली है। जो कुछ हमारे देखने सुनने में समझने में बातें आती है, सब उत्पत्ति और विनाश वाली है। और ये स्वयं वही रहता है, इसका भी अनुभव है कि मैं बचपन सा वही आज हूँ, मन शरीर वैसा नहीं है, परिस्थिति वैसी नहीं है, घटनाएं वैसी नहीं है, क्रियाएं वैसी नहीं है, देश काल वस्तु व्यक्ति सब में परिवर्तन हुआ है। तो जानते हुए परिवर्तनशील में आसक्ति कामना रखते हैं, इनके द्वारा अपरिवर्तनशील स्वयं हम सुखी हो जाएंगे, ये खास वहम है। भाई बहन सोचो तो समझ में ठीक आ जाए ये बात। ये विनाशी अविनाशी को क्या दे सकते हैं? और बड़े भारी आश्चर्य की बात है, ये विनाशी चीजों के द्वारा अपना महत्व अंकित करता है। हमारे पास धन अधिक हो जाए तो हम बड़े आदमी हो गए, हमारा मान आदर विशेष हो जाए तो हम बड़े आदमी हो गए, हम सीख करके बहुत सी विद्या सीख ले, याद कर लिया तो हम बड़े आदमी हो गए। ये सोचते नहीं कि विनाशी से तुम अविनाशी बड़े कैसे हो गए। विनाशी का जितना संबंध किया है, विनाशी का जितना आदर किया है, इतना तुम्हारा निरादर हो चुका, उतना तुम्हारा पतन हो गया। बात यह है, इस बात पर गहरा विचार करो। भाइयों से बहनों से सबसे बड़े प्रेम से कहना है कि इन बातों पर आप विचार करें, और शंका रह जाए तो उसको पूछें, समझ में न आ जाए तो पूछें, मेरी बातें विपरीत मालूम देती हो तो उनको पूछें कि ये तो बात आप कैसे कहते, तो उस पर सोचें। आप पूछेंगे तो उस पर कोई विचार करेंगे, हमें तो कोई नई दिशा मिलेगी। जो आप पूछेंगे क्यों ही हमारे तो ज्ञान की वृद्धि होगी, और हम जवाब भी न दे सके तो भी हमारी बेइज्जती हम मानते ही नहीं। आप ऐसी बात गहरी पूछ लोगे जिसका हमारे पास जवाब न हो, तो हम सभा में कुछ न बोल सके तो मेरी बेइज्जती मैं मानूंगा नहीं। आप निशंक पूछे, हमारी क्या बेइज्जती है? आप जो बात कह देंगे नहीं, आज जानते नहीं भाई, सीधी बात कहने में कौन सी बात है। ऐसे ही आपके पास धन आवे न आवे, उनमें इज्जत बेइज्जती क्यों मानते हो? धन से आपकी अगर इज्जत है तो खुद की इज्जत हुई क्या? ये जरा सोचो, खुद की बेइज्जती हुई है? किसी पद से आप अपने में महत्व का विचार करते हैं कि मैं बड़ा आदमी हो गया, तो बड़ा तो पद हुआ, आप बड़े कैसे हो गए? ये तो आपकी फजीती हुई है। किसी कारण से दूसरे के सहारे से हम बड़े होते हैं तो हम स्वयं तो बड़े नहीं हुए। हम विद्या पढ़ करके बड़े हो गए तो हम तो स्वयं बड़े नहीं हुए, विद्या बड़ी हुई। राज्य मिला, कोई संपत्ति मिली, मिनिस्ट्री मिल गई तो हम बड़े आदमी हो गए। तो तुम तो छोटे रहे, गुलाम हो गए, बड़ी तो मिनिस्ट्री हो गई, तुम बड़े कैसे हो गए? मनुष्य के बिना ये चीजें काम की नहीं है, और मनुष्य से ही ये चीजें काम की होती है। धन पृथ्वी में गड़ा पड़ा है लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का, पर मनुष्य जब तक नहीं उपयोग में नहीं रहे तो वे धन को हो चाहे पत्थर को, एक ही तो है। मणोबंध सोना पड़ा है और मणोबंध पत्थर पड़े हैं जमीन में। अब काम लेने वाला न हो तो फर्क क्या है उसमें? तो काम लेने वाले से उनकी इज्जत है, और बड़ी भारी दुख की और बड़े भारी आश्चर्य की हो विचार की बात है। उस धन से हम अपने को बड़ा मानते, कृपा करें थोड़ा सा ऐसा अनुग्रह करें इस बात को समझ लें। छूटे न छूटे कोई परवाह नहीं, कम से कम कम से कम कम से कम ये बात असल में तो आ जाए कि दूसरी चीजों से हम अपनी इज्जत बड़ी समझते हैं तो हमारी खुद की बेइज्जती हुई कि इज्जत हुई? ये तो जरा सोचो। तो जानकर ऐसी फजीती क्यों करा मैं अपनी? दूसरी बात, जो हमारे पास अभी नहीं है तो वो चीज मिल जाए तो हम बड़े हो जाएंगे। ये खास बात भीतर में बैठी गहरी बैठी रहती है। हमारे पास नहीं है वो मिल जाए हम बड़े कैसे हो जाएंगे? और बड़े नहीं हो जाएंगे, हमने पुरुषार्थ कर लिया, हमने उद्योग कर लिया, हमने परिश्रम कर लिया, हम सफल जीवन हो गए। जो हमारे पास नहीं है वो हमने उपार्जित कर लिया। ये नहीं सोचते कि आपके पास नहीं है उसको ले लिया तो वो रहेगा क्या? आप थे वो नहीं थी और आप रहोगे वो चली जाएगी। गहरी बात बैठी हुई है, जो चीज नहीं है उसको हम ले लेंगे तो हमने बड़ी उन्नति करी, बहादुरी करी हमने। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, ये वास्तव में बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो इस बात में है कि जो परमात्मा तत्व आपके पास नित्य निरंतर रहता है, कभी जिसका अभाव होता नहीं और अभाव होगा नहीं, अभाव है नहीं, उस तत्व की प्राप्ति कर ले, है जिसकी प्राप्ति कर ले तो अप्राप्ति कभी होगी नहीं। सदाई वो धन संपत्ति वैभव बड़प्पन आपके साथ में जमा रहेगा, तो है उसको प्राप्त कर लेना है मैं तो बहादुरी है। फिर बहादुरी मानते नहीं है उसको प्राप्त करने में बहादुरी मानते, यार अंत में नहीं रहेगा, धोखा होगा, धोखा, विश्वासघात हो जाएगी आपके साथ। आप समझते हमने बड़ा काम कर लिया, बड़ा नहीं कर लिया, बड़े धोखे में आ गया। इस बात पर विचार करें, हर एक क्षेत्र में सोचो। हम व्याख्यान सुनाते हैं, बहुत आदमी आ गए तो हमारी इज्जत बढ़ गई, और थोड़े आदमी आए तो हमारी इज्जत घट गई, और कोई सुनने नहीं आया तो हमारी इज्जत घट गई। तो ये इज्जत कितना दिन रहेगी? ये तो नष्ट होने वाली है ही, तो सदा लोग कैसे आ जाएंगे? हमारे हाथ की बात नहीं है, रोना पड़ेगा। तो ये मूर्खता पहले खरीदे ही क्यों अपनी? बहुत अच्छी बात, थोड़े आदमी आएंगे तो बड़ी मार्मिक अच्छी बढ़िया बातें होगी, ज्यादा आदमी हो गए तो बहुतों को लाभ मिलेगा, हमारा तो आनंद ही आनंद है। अरे कोई नहीं आए तो सब राम राम करेंगे, अरे क्या हुआ हमारा? जो हमारी चीज है वो जाने की है नहीं, अरे हमारी है, नहीं है वो रहने की है नहीं, और अभी नहीं है फिर आ जाएगी तो वो रहेगी नहीं, और अभी है पहले भी थी अगर ही रहेगी उसी की प्राप्ति कर रहे हैं तो मौज हो जाएगी सदा के लिए, और उसकी प्राप्ति में सब स्वतंत्र है। जो सर्वोपरि तत्व है उसकी प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है, और उसकी प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र है, सबल है, अधिकारी है, कोई अनधिकारी नहीं। उस तत्व की प्राप्ति में कोई अयोग्य नहीं है। संसार का पद संसार की संपत्ति योग्यता अनुसार मिलेगी, वैसी योग्यता नहीं रुचि नहीं मिलेगी। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए अयोग्य कोई है ही नहीं, परमात्मा का अंश है सब। हम चाहे समाज में दरिद्री हैं, दुखी हैं, दीन हैं, रोगी हैं, वर्ण से आश्रम से सबसे एकदम पतित है, परंतु भगवान की याद करते हरि हम तो पतित पावन सुने, तो उसे पतित पावन के रहते हम पतित कैसे रह सकते हैं। उसकी प्राप्ति में ही इज्जत है, प्रतिष्ठा है और मानवता है। वो देवी संपत्ति भी मोक्ष आय, देवी संपत्ति जितनी होती है खूब को आनंद देने वाली, सुख देने वाली, औरों को सुख देने वाली, मन में संतोष रखने वाली, बड़ी बढ़िया बात है। आज भी संपत्ति करोगे तो महाराज भयभीत भी होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, अगर इन महान नरकों की प्राप्ति होगी फिर भी महाराज इस तरह ख्याल नहीं करते। पतंती नरके सुसु भगवान ने ऐसे आश्रय संपत्ति वालों के लिए नरक बताए। अब उनके लक्षण वर्णन करते हैं कि वे आदमी कैसे होते हैं जो नरकों में जाने वाले हैं। तो कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता। आत्मसंभाविता अपने आप से ही अपने आप को बड़ा मानने वाले होते हैं, विद्या को लेकर, बुद्धि को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, धन को लेकर, पद को लेकर, अधिकार को लेकर, योग्यता को लेकर अपने आप को बड़ा मानते हैं। पार्श्व भाग में आया है कि सबसे नीचा कौन है, जो अपने ऊंचा मानता है वही सबसे नीचा है। आत्मसंभाविता पलायन संभावित चाकृति मरणादि आत्मसंभावित, अपने आप को पूज्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, उत्तम मानते हैं। तुम नीचे हो छोटे हम बड़े हैं, ये असली नीच का लक्षण है। हम बड़े हैं ये वहम कब होता है, जब आप छोटा होता है तब वहम होता है, कोई छोटा न मान ले। अगर आप ठीक होता है तो उसे मन में नहीं आती कि मेरे उसे बड़ा माने, हर्ज क्या। परमात्मा के अंश से छोटा कौन हुआ। और आत्मसंभाविता इस स्तब्धा कठोर रहेंगे, नमेंगे नहीं किसी की अगारी भी, अकड़ रहेगी मन में, ये तो हमारे छोटे हैं, ये कुछ नहीं जानते नहीं, ऐसा समझे नहीं, ये वर्ण में नहीं है, आश्रम में नहीं है, ये विद्या बुद्धि में नहीं है, हमारे समान पद ही इनके पास नहीं है, हम बहुत बड़े। धन मान मदान्विता, धन हमारे पास में, मान हमारे पास में, घमंड है खूब। कितनी विलक्षण बात, कितने अलौकिक, राम 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 राम। आत्मसंभाविता स्तवरा धनमान बदान्विता यजंते नाम यज्ञ से दम्भे नाभिधि पूर्वकम। अब ये जो पहले बताया था, कल आया था कि यक्षे दास्याम मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता, हम दान करेंगे यज्ञ करेंगे ऐसे अज्ञान से मोह है। तो अब कहते हैं यजंते, वे यजन करते हैं, नाम यज्ञ करेंगे। संसार में नाम तो यज्ञ का हो जाए, पैसा खर्च हो नहीं, और हो तो थोड़ा थोड़ा खर्च हो, नाम अधिक से अधिक हो जाए, अखबारों में नाम छप जाए, लोग मान आदर करने लगे, और वो यज्ञ किया जाए, दम्भ पूर्व किया जाए, दिखावटीपन से किया जाए, लोगों पर असर पड़ जाए, लोग हमारे को बड़ा समझें, बड़ा यज्ञ कैसा, बड़ा श्रद्धालु है, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, अर्दम पूर्व करेगा, अभी पूर्वक हम शास्त्र विधि को मानेंगे नहीं। यज्ञ दान तप आदि शुभ काम करेंगे तो भी अपने मनमाने ढंग से करेंगे, शास्त्र की आज्ञा से नहीं। जिससे कुछ अच्छा फल हो जाए ऐसा नहीं करेंगे। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संस्कृता मामात्मप्रदेशु पद्मसंतोभ्यसु युगा। अहंकार है, बल है, दर्प है, इस बातों को लेकर, काम क्रोध सबको लेकर, ऐसे ऐसे दुर्गुण दुराचार है, खराब खराब, इनको लेंगे, पकड़ेंगे और इनसे अपने को बड़ा मानेंगे। तो भगवान कहते हैं कि माम आत्मप्रदेशु, मैं जो सबके शरीरों में हूं और उसके खुद के भी शरीर में हूं, उसका तिरस्कार करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, भगवान की आदर नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप को ही बड़ा मानते हैं ना, भगवान को कौन बड़ा माने। प्रदूषणता मेरे साथ बैर करते हैं, अब ये सुविधा गुणों में दोष दृष्टि करते हैं, निंदा करते हैं, ये उनके लक्षण बताए। अहंकार में क्या कि मैं जो कर सकता हूं, मैं कैसा हूं, वर्णन पहले भी आया है इसका, मेरे समान और कौन है, कौन जो शिश्रिशो मया। ऐसे अहंकारम बलम, बल नाम हठ, बल शब्द दोनों जगह आता है, देवी संपत्ति में भी आता है, आसुरी संपत्ति में आता है। बल नाम यहां घमंड का है, उपनिषदों में बल शब्द आया है, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, बलहीन को नहीं प्राप्त होता, और यहां बल ये बात आई, इसका पहले बल आया फिर अशास वीतं घोरम तप्यंते तपोजना दम्बा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। वहां भी बल शब्द आसुरी संपत्ति में आया, यहां पर अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संस्कृता आया। तो बल क्या है, बल दो तरह का होता है, एक तो उत्साह है, उसका नाम ही बल है, हरेक काम करने में हिम्मत होती है, भीतर उत्साह होता है उसमें भी एक बल होता है, तो वो बल भगवान के भरोसे होता है, और अपना व्यक्तिगत बल मानता है वो गड़बड़ी हो जाती है। ये जितने जितने सद्गुण सदाचार है उनको अपना व्यक्तिगत मानते ही आदमी में अभिमान आ जाता है, पतन होता है, और ये सब के सब भगवान के हैं ऐसा मानने से भगवान की कृपा मानता है और उसकी उन्नति होती है। सद्गुण सदाचार को भी अपना मान लेगा ना, दया है, क्षमा है, उदारता है, आदि आदि अच्छे गुण है, इनको व्यक्तिगत मान लेगा मैं बड़ा उदार हूं, वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं बड़ा विरक्त हूं, बड़ा त्यागी हूं, तो विरक्ति और त्याग है वो भी अपवित्र हो जाएगी। व्यक्ति ने इसको अपना लिया और ये व्यक्तिगत गुण है नहीं, अगर मेरे में दया आ गई तो आप में दया आ नहीं सकती, क्योंकि दया तो मैंने ले ली, अब आप क्या लोगे, ये बात थोड़ी है, सबके सब दयालु बन सकते हैं। ये तो भगवान का गुण है, देवी संपत्ति है, देव परमात्मा है, परमात्मा के आप हम सब हैं, छोटे हो बड़े हो हैं उसी की परमात्मा के ही हम तो संतान, तो हम सबके सब दयालु बन जाए, फिर दया पड़ी जाएगी, बाकी इन्हें कितने में खर्च हो जाएगी। तो जो कुछ सदगुण सदाचार किसी के पास में है तो उसकी बापौती नहीं है कि गुण मेरा ही है, अब मेरा मन और अभिमान आया, देवी संपत्ति से अभिमान आ जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात, और देवी संपत्ति भी आश्री संपत्ति की जनक हो जाएगी तो कल्याण किसका होगा, कैसे होगा, निबंध आया आसुरी माता। तो हमने सत्यवादिता का, विद्या का, बुद्धि का, सदाचार का, सद्गुणों का अभिमान होगा तो वो आसुर संपत्ति हो जाएगी। कितनी बड़ी आश्चर्य बात, अब क्या करें हम, असत्य बोले तो आसुर संपत्ति और सत्य बोले मैं सत्यवादी हूं तो आसुर संपत्ति, अब इससे छुटकारा कैसे हो। तो सत्य भाषण करने में अपने को सत्यवादी मानते हो, मैं बड़ा आदमी हो गया सत्य भाषण करने से तो आसुर संपत्ति होगी, कारण उसके क्या है? अभिमान कहाँ होता है? अभिमान होता है गुणों की कमी से। सत्य भाषण करता हूँ तो सत्य भाषण का अभिमान तभी होता है जब हमारे जीवन में असत्य भाषण भी है, और सर्वथा असत्य भाषण निकल जाएगा तो सत्य भाषण ही हूँ ऐसा अभिमान नहीं होगा। मैं भी असत्य नहीं बोलता हूँ, तो असत्य नहीं बोलता है तो क्या बड़ी बात होगी? अपने में अभिमान नहीं होगा। अधूरे गुण का अभिमान होता है सदा। भर्तृहरि ने कहा है, यदा किंचित् सोऽहं द्विपैव मदान्धस्समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलेप्तं मम मनः। यदा किंचित् बुधजनसकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मेऽव्यपगत। कहते हैं यदा किंचित क्यों, थोड़ा जानने लगा, समझने लगा थोड़ा बहुत, तो द्विपयो मदांधस, मत वाला हाथी की तरह से होगा। मैं कितना जानकार हुआ, हुआ बड़ा विद्वान हूं। तदा सर्वज्ञोऽस्मि इति अभवद अवलिप्तम मम मन, ऐसा मन घमंडी हुआ कि बस मैं ही जानकार हूं संसार में, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते, ऐसा अभिमान हो गया। और जब थोड़ा थोड़ा जानने लगा, किसे? बुद्ध जन सकाशात, जानकार संतों के, सज्जनों के, विद्वानों के संबंध से, उनका संग करने से, यदा किंचित किंचित, थोड़ा थोड़ा अगर ही जानने में बढ़ा, बुद्ध जन सकाशात अवगतम, तदा मूर्खोऽस्मीति, फिर मालूम करे मैं तो महान मूर्ख हूं। ज्वर यू मदो में व्यपगत, वो घमंड था हाथी की तरह, जैसे आदमी का बुखार उतर गया, हल्का हो गया, ऐसा हल्का हो गया, वो बुखार उतर गया। तो ठीक जानने पर अभिमान नहीं होता। अभिमान होने का लक्षण यही है और कारण यही है कि अपने में अच्छाई का अभिमान होता है। अच्छाई का अभिमान जहां होता वहां से बुराई शुरू होएगी, बुराई का बीज पड़ गया है अच्छाई का अभिमान। अच्छाई हो पर अभिमान न हो, और बुराई हो ही नहीं पर अभिमान न हो। अच्छे पुरुषों की, महात्माओं की बातें हमने ऐसी सुनी है, उनमें बुराई तो रहती नहीं परंतु अच्छाई का अभिमान होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? वो अपनी नहीं मानते। ये तो भाई सामान्य गुण है, भगवान की देवी संपत्ति है, सबके सामने है, सभी अच्छे हो सकते हैं, इसमें हमारी विशेषता क्या हुई? जो मानव शरीर प्राप्त करके अच्छे गुण धारण नहीं किए, ये बड़ी गलती थी। अरे गलती निकल गई तो कौन बड़ी बात हो गई? इस वास्ते अधूरे ज्ञान का अभिमान होता है। अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती, वैद्य है, डॉक्टर है, अधूरा होता है, मार देता है मनुष्य, मगर पूरा जानता तो है नहीं। इस वास्ते अधूरी जानकारी है वो बड़ी खतरनाक होती है, और अभिमान ज्यादा पैदा हो जाए वो समझावे कौन? दूसरा समझाओ उसको, वो समझा दे, क्योंकि वो अपने ज्ञान की कमी मानता ही नहीं। और ऊंचे दर्जे के पुरुष होते हैं, उनके भीतर में ये अभिमान नहीं होता, हम बड़े भारी जानकार, बहुत सरल स्वभावन मन को दिलाई सीधे साधे। बहुत से लोग तो उनके मान लेते हैं ये कुछ नहीं जानता, सीधा साधा कुछ नहीं। अच्छे विद्वान होने पर भी लोगों पर असर पड़ता है कि ये विशेष जानते नहीं, क्यों? वो अभिमान है ही नहीं, सीधे सरल होते, सरल स्वभावन मन कुटिलाई जता लाभ संतोष सदाई। वे देवी संपत्ति वाले होते, क्योंकि वे भगवान के गुण मानते, अपना गुण मानते ही नहीं। ये तो भगवान ने कृपा करके अपनी संपत्ति दी है, भाई हमारे पास हमारा क्या है? अपना तो अभिमान है, पाप है, दोष है, गड़बड़ी है, वो अपनी भक्ति की हुई है, अच्छा ही है, वो तो प्रभु की है, उसकी देन है। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, जो समता है, संतोष है, जो कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, ये सब प्रभु की कृपा है, उस कृपा से प्राप्त हुई है। ये अपनी मनुष्य की उपार्जित नहीं है, इस बात वो सत है। और हमारे किए वो अवगुण है, असत है, इस बात वो निवृत्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ बुनियाद नहीं है भीतर। और अच्छा ही है, वो नष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो तो भगवान है, कारण उसे भगवान विराजमान है, भगवान जो अवलंबित है वो। इस बात अहंकारम बलम दर्पम, दर्प घमंड होता है, हमारे पास इतना धन है, इतना हमारा मान है, इतना हमारा सत्कार है, इतने लोग हमारे को अच्छा समझते हैं, तो ये जो प्रशंसा है, आदर है, ये मनुष्य के पतन करने वाली चीज। सज्जनों क्या बतावे, भाई बहन ध्यान दें, प्रिय लगती है ये बात, जो हमारे पतन की बात है, हमारा महान नाश करने वाली बात प्यारी लगती है। लोग आदर करे, सत्कार करे, बड़ा अच्छा लगता है, अरे निंदा करे, तिरस्कार करे, अपमान करे, बुरा लगता है। संतों ने क्या, सम्मानं कलयाति घोर गरलम नीचावमानं सुधाम, अपमान होता है तो सम्मानं कलयाति घोर गरलम, सम्मान है, आदर है, विशेष करके इस तो घोर जहर मानना चाहिए, महान हलाहल जहर है। नीचावमानं सुधाम, नीच अपमान करे, नीचे दर्जे की भारत तिरस्कार, अपमान है, अमृत मिल गया, निहाल हो जाओ। तो बात तो कहने में सीधी दिखती है, परंतु पता लगे जब अपमान हो जाए। इस वास्ते अपमान आता है कि निंदा आती है, तो भगवान की बड़ी कृपा माननी चाहिए कि भगवान बड़ी भारी कृपा कर रहे हैं, अब हमारे अवगुण दूर होंगे, हम काम अच्छा करें, निंदा होती है, काम हम उत्तम करें, उपकार का करें, हित का करें, वही निंदा करें हमारी, और दूसरे भी निंदा करें, डबल फायदा होगा, एक तो हम हित करें उसका लाभ होगा, और एक निंदा करें हमारे पाप दूर हो जाएंगे, और पुण्य सुरक्षित रहेंगे, अच्छाई करेंगे वो सुरक्षित रहेगी, वाह वाह होने से अच्छाई खत्म हो जाएगी। बैंक में रुपये किए और चेक कट जाएगा उतने तो कम हो जाएंगे, ऐसे जितनी प्रशंसा होगी उतनी तो अच्छाई हमारी खत्म हो चुकी, उतना तो भोग लिया खा लिया, वो तो अब वो जमा क्या होगा। इस वास्ते अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तो चित्त में प्रसन्नता रखनी चाहिए, सावधानी ये रखनी है कि हमने निंदा के लायक तो काम नहीं किया है, अपमान करने के लायक काम तो नहीं किया है, ये विशेष सावधान होना चाहिए कि निंदा हो रही है तो सावधान हो जाओ भाई, कहीं ना कहीं गलती हुई होगा, अगर गलती नहीं है तो निश्चिंत रहो। सब लोग निंदा करेंगे तो भगवान को ही हमारा अपमान नहीं करेंगे, भगवान के यहां बोझ नहीं होता, अभी इतने आदमियों ने इनको अच्छा कह दिया तो अच्छा हो गया, इतना बुरा कह तो बुरा हो गया, भगवान किसी की नहीं सुनते, वोट का क्या वहां इज्जत है मेरा, वोट से जो बढ़ाई होती है इसका अर्थ है मूर्खता की प्रधानता, ज्यादा तो मूर्ख ही होते हैं हर समय में। इसी से हम समझते हैं कि लोग अच्छा गए तो अच्छी बात है, लोग बुरा गए तो बड़ी अच्छी नहीं है, मैं तो बड़ी बेइज्जती हो गई, फिर बहुत अच्छा हुआ, जो इज्जत बेइज्जत में चली जाती है वो इज्जत क्या काम की, बहुत जल्दी आग लग गई, बड़ी अच्छी बात, ये तो नष्ट होने वाली थी, नाश होना थी, पहले चली गई बड़ी अच्छी बात है, अब ठोस चीज रह जाएगी, कहते पोल निकल गई, बहुत अच्छा हुआ, ठोस चीज रह गई, अब पोल तो निकल गई, अब पोल निकलने के बाद ठोस ही रहती है, पोल तो निकल गई, तो बड़ी अच्छी बात, ठीक हुआ, नुकसान क्या हो गया साहब, ठोस चीज निकल जाती तो भाई हमारे घाटा ही पड़ जाता है, अब पोल पोल निकली अच्छी बात, ठीक है, हम तो अच्छा मानते थे कि अच्छा नहीं है, बड़ी अच्छी बात, तो हमने तो आपको अच्छा माना था तो आपने गलती की, अब आपकी पोल निकल गई, हम जान गए, बड़ी अच्छी बात है, जानकारी का तो आनंद मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, धोखे में रहे उस वो गलती थी, अब धोखा मिट गया, ठीक है, हम ठीक तरह से आपको जानते हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत उत्तम बात। अब आप भूलना नहीं, पहले गलती की जो हमारे को अच्छा मान लिया, ऐसी गलती फिर नहीं करना। तू है वैसी बात तो छोड़े आ जाइए, तो अब आ गई ना, देख लिया ना आपने, हम तो ऐसे हैं। बड़ा आनंद रहता है इसमें, बड़ी मौज रहती। धनी आदमी हो कोई निर्धन मान ले तो उसमें हानि नहीं है, होवे निर्धन और धनी मान ले तो उसमें हानि है। टैक्स भी लगेगा, कोई मांगेगा भी, चंदा है चिट्ठा है वो लाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इज्जत बढ़ गई, पैसा है कम से मुश्किल हो गई। और धने पास में खूब गहरा और कोई मानता है जो टंकला है कुछ नहीं इसके पास में, तो चोर नहीं आवेगा, डाकू नहीं आवेगा, राज भी पीछे नहीं पड़ेगा, चंदा चिट्ठा भी नहीं होगा। हमारे तो संपत्ति की रक्षा ही है, इसमें अर्ज क्या है हमारे। तो देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार उपार्जित हो जाए उतने भगवान की कृपा करेंगे, प्रभु की दयान है, प्रभु की कृपा से ये चीजें आ रही है, व्यक्तिगत है ही चीज नहीं। तो ये दो श्लोक बताए अभिमान के, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदानता यजंते नाम यज्ञ से दम्भे नापित पूर्वम अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं संस्कृता मामात परदेशु पद्मसंतोभ्यसु यदा तानहं दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान। यह अंदर शब्द है, देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, वहां से लेकर आसुरी संपत्ति का वर्णन है। मनुष्य वाचक शब्द नहीं दिया भगवान ने, मनुष्य कहने लायक नहीं है। और यहाँ कह तो नराधमान तान दुष्ट क्रूरान, ऐसा द्वेष रखने वाले क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य में महान नीच नराधमान क्षिपा में विश्वास महान नाथवी से भी योनि, निरंतर उनको आलसी योनि में गिराता हूं पटकता हूं। सूकर कूकर सांप बिच्छू वृक्ष आदि ऐसी ऐसी योनियों में उन्हें डालता हूं। और आलसी योनि मापन ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसी आलसी योनियों में पड़ करके जन्म जन्म में दुख पाते हैं, बार बार वहां दुख पाते हैं। क्योंकि भगवान के संतान है तो भगवान उनको शुद्ध किए बिना छोड़ते नहीं, छोड़ा चाहे रोता रहे माँ तो धोकर के साफ करेगी ही, चाहे कितने रो, उसके मन के विरुद्ध है। छोरे को पानी डाल दे, छोरे का श्वास चल जाए बिना, ऐसे बहुत देर तो श्वास नहीं पहुंचता, तो माँ को तो दया आती नहीं। तो दया क्या, मूर्ख है, माँ तो साफ कर रही है, इसलिए से भगवान साफ करते हैं। अपमान भेजते हैं, निंदा भेजते हैं, घाटा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, तो भगवान तो साफ कर रहे हैं। मैं लग गया था वो साफ धोकर के स्वच्छ निर्मल बना रहे हैं। अरे इसमें रोवे तो मूर्ख है, रोता क्यों है, माँ के हाथ में फिर रोता क्यों, भाई हंसेगा कहा। ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान के हाथ में है, भगवान की दृष्टि में है, फिर हम रोवे क्यों, हम क्यों घबरावे। भगवान कहते हो घबराते, मैं तो दया नहीं करता, मैं तो कहता हूं बस क्षिपा में अजस्म अशुभान आसवी शु योनी शुभ, अरे आसवी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, बार बार जन्म जन्म में ऐसी आसवी योनि में जाते हैं। और फिर कहते हैं ततो जानते दिमाग, उससे भी और अधमगति को जाते हैं, नरकों में गिरते हैं, वाहन अशुद्ध कुंभिपाक आदि नरकों में गिरते हैं। तो साथ साथ क्या कहा है वो ध्यान देने की बात है, खास विशेष माम अप्राप्ति उभान दे तो अंत दिमागति, मेरे को न प्राप्त हुए अधमगति मुझे ले गए। माम अप्राप्त्य, अरे मेरे को न प्राप्त होकर के ही उससे और अधमगति में चले गए, तो प्राप्ति होने का अवसर ज्यादा है कि आसुरी संपत्ति में, जिसका अभिलक्षण बताया आत्मसंभवता स्तब्धा धर्मान वदानुता यजंते नाम यज्ञ से दम्भे नापिति पूर्वकम अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधं च संस्कृता क्यों आश्रय लिया है। और माम आत्म परदेशु प्रद्विषंतभ्यसु, ये कहा ऐसे तान अनुभव कियाता हूं। अरे कहते हुए मेरे को अप्राप्ति, मानो को भगवत प्राप्ति के लक्षण आते हों पीछे, ऐसे शुद्ध लक्षण थे, मेरी प्राप्ति के पात्र थे, वो मेरे को प्राप्त न होकर के अधमगति में चले गए। अरे पात्र थे ही नहीं आपकी प्राप्ति के, फिर माम अप्राप्त ही वो,
मेरे से मिले ही नहीं, और उद्यम से चले गए, क्या तो दर्शन। भगवान कहते हैं ये नराधम है, मैंने मनुष्य शरीर दिया था मेरी प्राप्ति के लिए, तो मेरे को तो अप्राप्ति प्राप्ति नहीं हुआ, ऊंधे ऊंधे काम करके किधर चले गए, चिंता कर रहे हैं भगवान। अवसर था मेरी प्राप्ति का, नराधम कहा ना, नर शब्द कहा, नर शब्द इस बात के भगवान कहते हैं नरपना था, मैंने दिया वो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् कामक क्रोधोत भवम बेगम सहयुक्त स सुखी नर है, वो नर बहादुर है वो, और ये काम क्रोधन से संसद था, काम क्रोधोत भवम बेगम सहयुक्त गुस्साने में समर्थ है वो नर है, और इसके अधीन क्या काम क्रोध मरा नराधम है, तो वो सह करके मेरे में प्राप्त हो गया, मेरी प्राप्ति हुई मामा प्राप्ति है वो बिना ही प्राप्त हुआ इसका क्या उधर। इसे सिद्ध है कि जीव मात्र वो जो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं अपने प्राप्ति का पूरा अधिकार देते हैं। बस आ जाओ भैया, अब योग्य आ गए तुम अधिकारी हो। रामायण में भी आया है ना, यही तो नुकर फल विषय ने भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। कभी करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु मनुष्य शरीर देते हैं, यह ध्यान देना। कृपा करके मानव शरीर देते हैं इसका आधा, इसका क्या मतलब है कि मनुष्य शरीर हो जाए तो मेरे को प्राप्त हो जाए, तो भगवान ने आशा की कि मेरी प्राप्ति करेगा, और उल्टा नरकों में चला जाए तो भगवान के साथ विश्वासघात कर रहा है। भगवान ने भरोसा किया, अगर हम उल्टे न चले तो भगवान की बात सिद्ध हो जाए, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए हमारा, पर माम अप्राप्ति ही वो काम दे तो अंत मान देते हम, उसे भी अधमगति हो जाता। बात क्या है, काम क्रोध साल हो गए, तीन प्रकार नरक दर्जा है, इधर जो दर्जन चढ़े भोगों की कामना हो जाए, बस भोग भोग ले, रुपया हो जाए ऐसा कर लेंगे, इतना ऐसा हो जाएगा, तो से एक से दशा बैठा के दान करेंगे, ये भी करेंगे, बस इतना धन है इतना मिल गया है, इतना और मिल जाएगा, इतना ऐसा हो जाएगा, राम 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 राम, कौन सा धंधा छेड़ दिया भाई ये तन। भगवान का भजन करते, कीर्तन करते, सत्संग करते, स्वाध्याय करते, सत्शास्त्रों का विचार करते, भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ते, उधर ध्यान देते, निहाल हो जाते, वायुमंडल शुद्ध हो जाता आपका महाराज, विलक्षण कैसा कैसा आपका उपकार हो जाता दुनिया मात्र, कितना आपसे हित मिलता, कितना उनका उपकार होता, कितना उनका बल मिलता, कितना उनका उत्साह मिलता लोगों को जो कि परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलते। अर्थन आदि मिल गया तो लोगों की ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं है धमाई, जो भोग अधिक होंगे, जो धन अधिक होगा, तो ही और हृदय में जलन पैदा होगी, जो भजन स्मरण करके पारमार्थिक उन्नति करोगे, आपको देख करके प्रसन्न होंगे लोग, सुन करके प्रसन्न होंगे, आपकी जीवनी सुनकर जब प्रसन्न होंगे, आपके नाम सुनकर प्रसन्न होंगे, कौड़िये को खर्चा होगा नहीं, बड़ा भारी उपकार हो जाएगा। और इधर बड़ी कठिनता से कई दोस्त सह करके धन इकट्ठा किया और लोगों में जलन पैदा कर दी, आग पैदा कर दी, लोग और परलोग दोनों बिगड़ते हैं, अपना आप बिगाड़ हुआ, लोगों का बिगाड़ हुआ। तो ऐसे नराधमों को मैं क्षिपामी अजस्रम अशुभाम, ऐसे अशुभ है अशुभ, वे शुभ नहीं, नाम नहीं लेना चाहिए उनका, नाम आ जाते भी कलंक है। तो अशुभान आशीष है भी होने क्षिपा में, अजस्रम क्षिपा में धरेंद्र पठाता हूं, बार बार गिराता हूं, क्यों ज्यादा कपड़ा मैला हो जाता है, नांद में खूब उबालते हैं, उबाल कर फिर शिला पर खूब पीटते हैं, फिर उबालते हैं, इसी तरह से साफ करना है ना। तो आते थे मांगते फिर अधिमुक्ति हो जाते, उड़ी का उसी का रास्ता उधर ले गया, फिर उधर जाते, अरे मनुष्य शरीर प्राप्त किया भैया, अब तो चेत करो, जरा ध्यान दो, रामायण ने बताया ना सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, तो बताया कि सर्वसे सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चरा चर जाचत जेही। चर अचर सब जीव इस मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं कि मानव शरीर मिल जाए, क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। ये देही कैसी, ये शरीर जो मनुष्य का मिला चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये नरकों को देने वाली स्वर्ग को देने वाली मुक्ति में जाने के लिए तो खास निशेनी है, और ज्ञान है वैराग्य है श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है ये देने वाली ये मानव देह है। तो मानव देव की महिमा कहते हुए नरक शब्द दिया, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। तो बढ़िया से तो बढ़िया है, घटिया से घटिया है। तो घटिया क्या है, दुरुपयोग घटिया है, सदुपयोग बढ़िया है। इस वास्ते वस्तु है परिस्थिति है ये कोई बढ़िया घटिया नहीं होता है, इसका उपयोग अच्छा किया जाए उत्तमता से किया जाए तो कल्याण हो जाए। अब इस बात को देख रहा आप, दरिद्री का कल्याण हो जाए, धनवान का कल्याण हो जाए, रोगी का कल्याण हो जाए, निरोग का कल्याण हो जाए, विद्वान का कल्याण हो जाए, लंथ मूर्ख उसका कल्याण हो जाए, अनुकूल परिस्थिति से कल्याण हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति से कल्याण हो जाए, उद्धार होने में कोई परिस्थिति विशेष कारण नहीं है। कितना सुंदर कायदा है ये, भगवान के विधान की तरफ विचार किया जाए सच्ची दिल मुग्ध हो जाएगा बाप प्रभु। जैसी स्थिति में उसी स्थिति में भगवान के साधन चले जाओ। गुणों से संसार में पद मिलता है, वास्तव में गुणों की महिमा अवगुण संपन्न है उस जगह है, धनी की महिमा निर्धनों में है, विद्वान की महिमा मूर्खों में है, ऐसे योग्यता की महिमा अयोग्यों में है। और भगवान मूर्ख नहीं है, अयोग्य नहीं है, वो निर्धन नहीं है, तो उसके सामने आप कीजिए तो उसके सामने तो आप सीधे सरल हो जाओ, हे नाथ अगर भगवान प्यार लगे। वनवास में पधारते हैं तो शबरी की कुटिया पूछते हैं भगवान, बड़े बड़े ऋषि मुनि तागी तपस्वी रहते थे, उनके ना पूछ के शबरी कहाँ है, शबरी कहाँ है, शबरी किस जगह। तो गुजराती पद में आया ना, मोटा मोटा मुनि जन ना आश्रम मुकीन, ये शबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। मोटा मोटा मुनि जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, उनकी कुटिया मुनि वहां चले जाते, ना ना हमारे शबरी कहाँ है। तो शबरी में क्या था, वो बेचारी बड़ी सरल नम्र अपने मानती, अपने कुछ नहीं मानती थी, वो सेवा करे जिसमें डरती थी कि ऋषि मुनि पर किसी मेरी छाया न पड़ जाए, नहीं वे अपवित्र न हो जाए, डरती थी ऋषि मुनि को, भाग जाती धमका दे दे। मतंग ऋषि बड़े वृद्ध संत थे, बेटा तुम भागो मत, यहां रह जाओ, हमारे यहां रह जाओ, आश्रय दे दिया। ऋषि मुनियों ने महाराज उनका बहिष्कार किया, कैसी नीच जाति उपासना रख लिया महाराज ने, आश्वासन दिया। अब महाराज ब्रह्म लोग जाने लगे, वो रो पड़ी, जैसे कोई मां दूर जाती और बालक की दशा हो, वो दशा हो गई। तो कहा बेटा रो मत, रो तेरे यहां ठाकुर जी आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान पधारेंगे। अब महाराज ये कह दिया, बड़ी मन में प्रसन्नता हुई, संतोष हुआ, हमारे रघुनाथ जी महाराज पधारेंगे। महाराज के वचन है वो तो झूठे हो नहीं सकते, वृद्ध संतों ने जो बात कही है आशीर्वाद है, उनकी कृपा है मेरे पर, तो भगवान तो पधारेंगे। तो सबरी प्रतीक्षा करती, सबरी शकुन मनावे मेरे घर राम आवेंगे, हमारे घर राम आवेंगे, मेरे घर आएंगे भगवान, भगवान पधारेंगे। रातों जगती महाराज, पत्तों में खनखनाहट होती, कोई जानवर चलता तो बाहर निकल के देखती रघुनाथ जी महाराज आ गए, भगवान पधार गए। बहुत दूर कर रास्ता साफ करके आते, महाराज वो कांटे में चुभ जाए, कंकर में लग जाए, फल जाती बड़े बड़े बढ़िया अच्छे अच्छा चक चक करके बढ़िया मीठे फल लाला कर इकट्ठे थे, महाराज आए तो फल दूंगी। भगवान को फल बहुत मीठे लगे, सबरी के फल बहुत मीठे लगे। एक कथा याद आ गई हमने सुनी है संतों से, श्री रघुनाथ जी महाराज जब राजगद्दी पर विराजमान हो गए तो महाराजा जनक ने और महारानी सुनैना ने विचार किया, अब तो अब राजा धीराज हुए, उनको बुलाना चाहिए, अपने खास अपने दामाद भगवान राम और राजा धीराज हुए बैठ राजगद्दी पर, उनको बड़े आदर से बड़े चाव से बुलाए। ठाकुर जी महाराज पधार गए तो वहां ससुराल है, मैंने ससुराल में तो सब तरह का होता है, गाना बजाना जो होता है, जैसा हंसी दिल्ली मुस्करी वो भी होती है। तो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाई गई, तरह तरह के पदार्थ बनाए गए। साधारण घर में भी दामाद आता है तो साधारण लोग भी अपनी दृष्टि से बड़ी बढ़िया तैयारी करते हैं, और महाराजा जयनगर सुनैना जी उधर और शिवनाथ जी महाराज पधारे हैं तो बहुत बढ़िया तैयारियां होने लगी। दास 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 या जितनी वे है, महारानी है, वो है, सब लग गए। सीता जी भी लग गई काम रसोई बनाने में, खूब अच्छी तरह से बनाओ, बढ़िया बढ़िया रसोई बनाओ जी, रसोई परोसी गई, अलग अलग बनाई हुई, कोई किसी की बनाई, कोई किसी की बनाई हुई, वो सब परोस करके कहा कि महाराज बढ़िया चीज कौन सी है। अब सखियां बैठ गई पास में, उनकी अभिसंधि क्या है, भीतर का भाव क्या है, ऐसा विचार किया। हाँ महाराज ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी बनी, ये चीज कैसी बनी। ठाकुर जी ने विचार किया, अभी बात तो ठीक कहते हो, तो सब चीजें चखी और देखा, क्यों महाराज कैसी बनी, साधारण बड़ी है, बढ़िया नहीं है, किसी की प्रशंसा नहीं की, साधारण अच्छी चीज है, अच्छी है, सब अच्छी, तो सब अच्छी महाराज बढ़िया क्या, बढ़िया भोजन तो हमने किया था, वैसा नहीं। वो क्या भोजन था, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई, जब जहां पहुन आई तब तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सबरी के फलन में जो मधुरे भरती वो मिठास तो नहीं है भाई, किसी में ही नहीं है वो तो। बताइए जंगल में बेर बड़े लगे बढ़िया, अब वो बढ़िया बन रही है, नई बात है, अब क्या करे सके, शत्रुओं के सरदार है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं घर, बचपन से ही माता कौशल्या जी बना बनाकर भोजन देती, फल देती, प्यार करती, हृदय लगाती, दुलारती, तो माँ का दिया हुआ भोजन कितना प्यारा होता है, कितना मीठा होता है। कहा होता है कि भले जीवनो तो मारे हाथ हो, भले जहर माँ के हाथ से भोजन करना चाहिए, माँ का जो हृदय होता है वैसा हृदय और का होता नहीं, इस बात से माँ के द्वारा परोसा हुआ भोजन बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है। तो कौशल्या मैया जहाँ रघुनाथ जी तो लाला बने, अरे कौशल्या अम्बा माँ है, कितना ऊंचा दर्जा माता जी का, भक्तों में भी कितना ऊंचा दर्जा, जिसको रघुनाथ जी महाराज ने माँ बनाया, वे प्यार से भोजन कराती तो बड़ा अच्छा लगा। अब माँ भोजन करावे इसके बाद में पढ़ने लायक हुए तो घर गुरुगृह गए पढ़ने, रघुराई तो ट्यूशन बुलाया नहीं था उनको वशिष्ठ जी को कि तुम आओ पढ़ाओ महाराज कुमारों को पढ़ाओ, अरे गुरु जी के जाकर पढ़ना चाहिए, गुरु जी बुलाना चाहिए, महाराज कुंवर गए वंकरे साहब गुरु गृह गए पठन रघुराई। रघुनाथ जी महाराज वैसे ही चोटी लिए हुई रस महाराज जिन्हें ऊपर डाली हुई ये दंड हाथ में लिया हुआ और वो पोस्टर ब्रह्मचारी बने हुए पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ। अब पढ़ते हैं तो अरुंधति जी माँ है वशिष्ठ जी के धर्मपति ब्राह्मणी, उसके कितना आनंद आया होगा ये रामलला हमारे महाराज को कितना वो गोदी में लेती प्यार करती स्नेह करती और करे क्या माँ ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो कोई बच्चे हो गया खिला दे उसको और क्या करे। तो वो अरुंधति जी भी खिलाया करते अपने पास में बढ़िया से बढ़िया राजगुरु घर था हमारा वही मामूली घर था भी बढ़िया बढ़िया चीजें रघुनाथ जी को बड़े प्यार से गोदी लेकर प्यार पूर्वक रामलला ये खाओ बेटा ये खाओ ऐसे खिलाती। तो रघुनाथ जी महाराज को बहुत आनंद आता। अब महाराज थोड़े बड़े हो गए बालकों के साथ खेलने को चले गए तो अपने मित्र थे उन घर पर चले जाए तो वे माताएं भी देखे हमारे घर महाराज कुंवर आ गए अपने बच्चों के साथ उनको भोजन करा दी बड़े प्यार से तो वो भोजन भी बड़ा अच्छा लगा। अब राजगद्दी पर विराजमान हो गए तब वे माताएं जितनी थी जो पहले प्यार से गोद में खिलाती थी बड़ी बूढ़ी माताएं अब वे कहती भाई महाराजा धीराज हमारे उनको बुलाओ अपने घर पवित्र करो। तो महाराज की पधराणी करती बड़े आनंद उत्सव से और भोजन कराती तो वहां अपने मित्रों के घर पर बड़ा आनंद आता। एक अपनी मां एक मित्र की मां मां से बड़े अधिकार उसका आदर ऐसे उनके घर भोजन करती। और फिर ससुराल गए तो ससुराल का तो भाती अलग ही बात ये वास्ते कहते हैं घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे। भाई जब जहां पहुनाई कहीं भी पहुनाई हुई ठाकुर जी महाराज की तब तहां कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी के फलों की तो मधुरा मां मिली नहीं कहीं भी वो मिठास वो आनंद है। अब इसमें देखना है घर में जो कौशल्या मां देती थी तो कौशल्या मां के लिए रघुनाथ जी महाराज दुर्लभ नहीं थे वो तो गोदी में ही रहते गोदी में ही खेलते सदा ही खाते सदा ही खिलाती। पर अरुंधति जी के लिए तो दुर्लभ थे वो तो पढ़ने को गए तब न मिले जितना दिन पढ़े उतना दिन मां को अवसर मिला अरुंधति जी माता जी को तो अवसर थोड़ा मिला। वो जो थोड़ा मिलता है जो उमड़ता है प्रेम ज्यादा और ज्यादा प्रेम होता है तो भोजन बढ़िया लगता है। एक संत से पूछा कि भोजन बढ़िया कौन सा कि खाने वाले की अपेक्षा खिलाने वाले को ज्यादा आनंद हुए वो भोजन बढ़िया और दोनों को बरोबर आनंद आवे तो साधारण और खाने वाले तो ज्यादा आवे कि माल खा लो अपने खिलाने वाले कहते आप बताई दो भाई इसलिए वो सबसे घटिया। तो माता अरुंधति जी को बड़ा आनंद आता रामलला हमारी गोदी में आवे और हम प्यार से भोजन करावे तो घर कौशल्या मां देती उससे भी विशेष आनंद आया उसमें। और जब मित्रों के घर पर जावे तो उसमें आनंद अधिक तो मित्रों की माताओं को तो अवसर मिलता नहीं। अरुंधति जी है वो तो महाराज गुरुवाणी जी है वो राजमहलों में जा सकती है ठाकुर जी उनके घर पर आ सकते हैं परंतु मित्रों की माताओं को तो अवसर मिलता नहीं उनको तो अवसर बहुत कम मिलता है भोजन कराने का। इस वास्ते उनके प्रेम रहता जा दे कि हम खिलावे ये खिला दे वो खिला दे वो खिला दे ऐसा। और ससुराल में तो मौका और भी कम मिलता है अरे वे प्रजा है उसके दर्शन तो होते हैं ससुराल में तो दर्शन नहीं होते तो वो दुर्लभ मिलता है। वो माँ प्रेम महाराज उनका सुनैना जी का बहुत स्नेह था इधर स्नेह था महाराज दशरथ जी का और कौशल्या माँ थी ज्ञानी और उधर दशरथ जी महाराज ये जनक जी महाराज तो ज्ञानी थे और सुनैना जी थी प्रेमी। उस बात कहा जी बालकों के हाथ में धनु दे रहे क्या कर रहे हैं महाराज ऐसी बोल गई वो तो महारानी क्या बताओ भूप सयान पर सकल शेरानी। महाराजा जनक की तो बुद्धि मारी गई। भूप सयान पर सकल शेरानी, जो इन बच्चों के हाथ में धनुष्मान दे रहे हैं और ये मंत्री लोग हैं, सब के सब क्या कर रहे हैं? राजा जी कोई सलाह ही नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चों को धनुष उठाने के लिए कह रहे हैं। ये दुलार के लाए तैयार करते नहीं, कठोर धनुष उठाने लायक वो स्नेह बहुत उमड़ रहा है महाकृष्ण को सुना है ना जी के। अब वो भोजन करावे प्यार से और मिले बड़ा दुर्लभ सा से, अब उनको कितना आनंद आता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं एक एक से बढ़ करके प्रिय गुरु घर घर गुरुगृह घर गुरुगृह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई तब तहां कही सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सवरी वाला जो आनंद है वो नहीं मिला कहीं भी, क्योंकि सवरी को तो बेचारी उम्र भर में एक बार मिला और वो भी मिला केवल कृपा से। माता जी अपना अधिकार मानती है, गुरुवाणी भी अधिकार मानती है, प्रजा की माता है वो भी अलबत्ता अधिकार मान, हमारे महाराज अधिराज है और सुनैना जी है वही भी अधिकार मानती है, हमारे दामाद है, सबरी मानती केवल इनकी कृपा है, हमारा तो कोई अधिकार नहीं है, किसी तरह का हक नहीं लगता है, ये तो केवल कृपा करके बना रहे, केवल कृपा ही मानती है। इस वास्ते उसमें जो मिठास मिला है श्री रघुनाथ जी को मिला है। कृष्णावतार रामावतार दो अवतार मुख्य माने जाते हैं अभी कलयुग में। कलयुग में जिनकी महिमा गाई जाए विशेष आदरणीय दो अवतार ही माने, भागवत एकादश माता। तो तत्वेता तिहुं लोक में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। रामावतार में एक बार तृप्ति पूर्व भोजन मिला और कृष्णावतार में एक बार विदुर घर विदुरानी जी का, विदुरानी जी जब भोजन कराया तब ठाकुर जी को बड़ी तृप्ति हुई। स्नेह बहुत था ना, बहुत प्यार, बड़ा स्नेह, तो वो स्नेह अधिक है उस कारण से भगवान को वो भोजन बड़ा प्यारा लगता। एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार। तो सज्जनों भावग्राही जनार्दन, भगवान को भाव ग्रहण करते हैं, भाव भगवान कह रहे माम अप्राप्य हुआ, ऐसा मौका मैंने दिया मानव शरीर में जिससे मेरे साथ कुछ संबंध न होकर भगत बन करके मेरे को इतना प्यार से भोजन करावे, ऐसा मेरा लाड लड़ावे, ऐसा मौका दिया माम अप्राप्य हुआ, मेरे को तो प्राप्त हो गए तो नरकों में गए माता। राम 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 राम, राम, राम। क्या तो मैंने अवसर दिया, मौका दिया और काम किया गया। तो मनुष्य मात्र को भगवान ने अपने स्नेह का, अपने प्यार का, अपनी भक्ति का, अपने ज्ञान का अधिकार दिया। तुम इसको प्राप्त कर सकते हो, आप संसार में क्या कर सकते हो बताओ? एक एक से बड़े धनी बन जाओ तो सबसे बड़ी धन बन दे सकते, एक एक से भोग दिखो तो सबसे भोग अधिक कर नहीं सकते। आप बड़ी पारी क्या काम कर सकते हो? जो नहीं है वो करोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे वो परमात्मा जो हमारा है, आपका है, सबका है, छोटे से छोटे से छोटेगा, बड़े से बड़े से बढ़ेगा, सबके वो परमात्मा हमारे हैं, खास अपने हैं। ऐसे ये हड्डियां अपनी नहीं है, ये हड्डियां यहीं पड़ी जाएगी लोग जा देंगे। अरे वो भगवान हमारे हमारे खास हमारे, उसे विमुख होकर संसार में लगे तो अंतर मान लगेंगे। माम अप्राप्य व अप्राप्य व, बिल्कुल अप्रसंगिक पद दिखता है, मेरी प्राप्ति न करके और अधमुक्ति हो जाते। तो ये परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सुंदर अवसर है, ऐसा मौका है सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और लग जाओ उसमें। भगवान आपकी योग्यता नहीं देखते, कितने आप पात्र हो, कैसे योग्य हो, कितने ऊंचे दर्जे को, और ऊंचे दर्जे के आदमी नीचा दर्जा, भगवान को पुकारे। माँ जो होती है वो बालक का ऊंचा दर्जा देखती है क्या? वो तो स्नेह देखती है, प्यार देखती है। वो रहता नहीं बालक बिना माँ के, तो माँ नहीं रह सकती बालक के बिना। ऐसे प्रभु के बिना हम न रह सके तो प्रभु के काम अटक जाए महाराज। भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी भक्त के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वहां हार जाते हैं। हारने में आनंद आता है ठाकुर जी। हराना भी मिलेगा कौन बताओ, उनको बल से कोई हरा नहीं सकता। किसी गुण से विलक्षणता से ठाकुर जी के ऊपर अधिकार नहीं पा सकता आदमी, और ठाकुर जी का होकर अधिकार पा सकता है। महारानी पर अधिकार कौन पावे, राजा महाराजा क्या वो बालक अधिकार पा लेता है, माँ पर अधिकार, माँ को चाहे जो कर नाचना चाह। राजा महाराजा है वो जब एकांत में रणवास में वहां पर होते हैं तो बालक विजय पा लेता है ठाकुर जी और बड़े राजा पर भी बच्चा है। ऐसे भगवान का बालक हो जाए सीधा साधा सरव कि महाराज हम तो ऐसे ऐसे है जैसे कि जैसे चले जाए, सत्र ही नहीं करते। चतुराई कहां से चलेगी भाई, चतुराई चतुराई तो वहां बहुत भरी हुई है समझो, वहां तो कमी कमी की कमी है। ठाकुर जी के यहां कमी की कमी, तो कमी हमारे में हो जाए खूब तो हम भगवान धनी हो जाए हमारे से। भगवान की कमी की पूर्ति कर ले आओ, कैसी मौज की बात है। माता के कमी की पूर्ति करता है बच्चा, समझे, गोदी में चले जाए मां खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की तरफ चलते हैं, कैसी मौज की बात। नारायण 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 नारायण
नवनीर राभात नीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने। हरिः ॐ नमः परमात्मने नमस्तु गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले भ्यो नमः। राम 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 तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपां यजस्त्रमशुभान् नास्त्रीष्येव योनिषु। ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, नराधम हैं, क्रूर हैं, उनको मैं आसुरी योनि में ही गिराता हूं। आसुरी सेव योनि, भगवान वास्तव में कल्प वृक्ष हैं और आप हम सबके सभी उस परमात्मा की छत्र साया में हैं। तो जैसा हम भाव बनाते हैं उसके अनुसार ही हमारी गति हो जाती है। तो मानव शरीर में आकर के आसुरी प्रकृति बना ली, राक्षसों असुरों जैसी प्रकृति अपनी बना ली, स्वभाव बना लिया, तो भगवान कहते हैं उनको आसुरी योनि में ही गिराता हूं। जब तो इनकी शोक है तो ऐसे चल जाओ। एक बात याद आ गई, यहां समुद्र किनारे कई वर्षों पहले हम लोग गए थे मछली देखने के लिए, तो रंग रंग की वहां मछली थी, रंग रंग। तो मन में आया जो भाइयों के बहनों के विशेष रंग के पहनने की मन में होती है, ऐसा रंग हमारे, ऐसी साड़ी होनी चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। तो भगवान ने कह दिया ऐसे ही बन जाओ, तो वैसे ही रंग कर दिए। तो भगवान की कमी थोड़ी है, उस दरबार में कमी तो है नहीं। ऐसी जो आसुरी संपत्ति में अपने रचे पचे रहते हैं, दम्भोदर पो विमान क्रोध पारुष्यमेव ज्ञानम चाविदास्य पार संबंध आसुरियम, तो आसुरी योनि में रहते उनको कहते हैं, मैं आसुरी संपत्ति में रहते उनको, उन द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजस्रम अशुभान, उन अशुभान को आसुरी स्वेव योनिषु क्षिपाम्य, आसुरी योनि में ही गिराता हूं। जैसे कुघर आतो तो मुर ही सुहातो नाम, ऐसे घुर्रा तो मानो स्वान है कटाऊ सो, घर पर कोई आ जाए मांगने वालों तो ऐसा जोर से चिढ़ता है जैसे कोई काटने वाला कुत्ता हो जिस तरह से, तो क्या उनको फिर भगवान कुत्ता ही बना देते हैं। कि भाई ऐसा स्वभाव तुमने बना लिया, चोरी हमारे से ले लो, वो पहन लो। पद्म पुराण में एक कथा आती है, उसमें एक ब्राह्मण गया है तीर्थ यात्रा में, तो पुष्कर गया, पुष्कर के वृद्ध पुष्कर गया, जो बूढ़ा पुष्कर कहते, वहां से आगाड़ी चाल करके वो स्नान आदि करके चला, तो जंगल में पांच प्रेत मिले। उन प्रेतों ने अपनी अपनी बात सुनाई, वो शीघ्रगर पिधानकर ऐसे ऐसे नाम थे उनके, तो उनको घेर लिया। वो पास में तो कोई नहीं आवे, परंतु घेर लिया और रोने लगे। अरे क्या बात है कि महाराज, हमारी बड़ी दुर्दशा हो रही है, आपकी ये धोती है गीली, इसका थोड़ा जल हमारे को छाट दो तो बहुत लाभ होगा हमारे को। तो दिया तो वे बोलने लगे, कहते हमारे घर पर कोई आदत, हम अतिथि सत्कार तो दूर रात देते नहीं थे, तो इसका नाम पिधानक है, अर्थात कोई घर पर आ तो आड़ा पहले ही बंद कर देता, कोई आ न जाए भीतर। और ये शीघ्र का है, ये देख लेता कि कोई अतिथि आता तो वहां से चल देता, घर पर रहता ही नहीं। ऐसे ऐसे स्वभाव उन्होंने बनाए, तो उसी तरह से प्रेत हुए, तो वही उनका नाम हुआ। फिर धोती के छींटे मिलने से वो कहने लगे, अब हमें पता लगा कि पूर्व है ये, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, नहीं तो हमें इस बात का होश ही नहीं, क्या कौन है कैसा है पता ही नहीं। तो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग दशा होती है, और ये दशा बदलने का अगर स्थान है तो ये मानव शरीर ही है, इसमें स्वतंत्रता दी गई है। जैसे गाड़ी रेल चल पड़े तो पीछे हाथ की बात नहीं, वो तो जहां जाएगी वहां जाना ही पड़ेगा, और स्टेशन पर खड़े हैं तब तक चाहे किस गाड़ी में चढ़ जाए, चाहे किसका टिकट ले लें, जिधर जाना हो। ऐसे मानव शरीर है, इसमें सब तरफ जाने की लाइन है। यहां बड़ा स्टेशन भूसावल कहते हैं, उसे सब जगह गाड़ियां छूटती सब तरफ, तो ये बड़ी स्टेशन है मनुष्य शरीर। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नरकों में जाना हो, स्वर्ग में जाना हो, वैकुंठ में जाना हो, और ब्रह्मलोक आदि में जाना हो, मुक्ति प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, वैराग्य प्राप्त करना हो, 84 लाख जोनी प्राप्त करना हो, निर्मल भगवान की भक्ति प्राप्त करना हो, तो यहां सब मिलती। ये बाजार यहां खुला है, चाहे सुई ले लो, परंतु बहुतों को इस बात का पता ही नहीं है, और बहुत से इस बात को मानते ही नहीं है, क्योंकि जिस विषय में नहीं जानते उस विषय में वे कैसे माने बेचारे, पता ही नहीं। और किन को पता है तो वो आदर नहीं करते, परवाह नहीं करते, सोचते नहीं है कि भाई यहां रहने का पता तो है नहीं। बालक गर्भ से आता है तब से लेकर 100 वर्ष की आयु तक सबके सब वर्ष मौत के लिए खुलने, सब महीने, सब दिन, सब घंटा, सब मिनट, सब पल, सब सेकंड खुली है मौत के लिए, कभी मर सकता है। इस वास्ते ये काम पहले करने का है, अपना कल्याण पहले कर ले, क्योंकि असली काम है वो कर लिया तो फिर रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा के तो कोई परवाह नहीं, और असली काम बाकी रहेगा, और कामों में समय बढ़ते बर्बाद हो गया तो पश्चाताप करना पड़ेगा। और यहां बड़ी स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता को लेकर जो आसुरी संपत्ति अपने में लाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध परायणा, जैसे भगवत भगवत परायण होता है भक्त, ऐसे ये काम और क्रोध के ही परायण, और समझते हैं कि ऐसा ही होगा। और कामोपभोग भोग परमा, पदार्थों का संग्रह करना, सुख भोगना, बस यही है, एतावत निश्चिता बस। और इससे ऊंचे तो कि स्वर्ग परा, वो स्वर्ग परायण, नानंद स्थिति बात और कुछ है ही नहीं, ऐसे और भोगों में ही लगे हुए हैं।
अपना जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार देखा वैसे इतना ही है। अरे भाई जानकारी बढ़ाओ, और बहुत बड़ी जानकारी बढ़ सकती है, जानने के लिए बहुत बाकी काम पड़ा है। आकाश है वो वृक्षों के लिए खुला है, अब धूप थोड़ी थोड़ी बढ़ करके ऐसे फैल जाए, ऊंची ना बढ़े तो ये क्या करे। फूलों के और पौधे होते थोड़े थोड़े बढ़ जाते हैं फिर नहीं बढ़ते, नीम पिंपल आदि ऊंचे बढ़ जाते हैं फिर नहीं बढ़ते, अब खजूर है ताड़ है आदि और ऊंचे बढ़ जाते हैं फिर वहीं बंद हो जाते हैं। आकाश की तो मना है नहीं, वो तो चाहे जितने बढ़ जाओ। ऐसे ही मानव शरीर प्राप्त करके मनुष्य अपनी उन्नति करे बढ़े तो कितना बढ़ सकता है कि चाहे जितना बढ़ सकता है, उसकी कोई मना नहीं। परंतु अगर ये बढ़ते ही नहीं, ये तो वहां ही बस खत्म हो जाते हैं, थोड़े से मैं एकावधि से ऐसे ही भर गए तो अपना अहित करते। पहले कहा ना जगत अहिता, जगत का नाश करने वाले शत्रु, तो नाश ही करते दूसरों का विनाश करते हैं। ऐसी आसुरी प्रकृति है, इसका विनाश करना चाहिए। जो पतन करने वाली चीज है इसको बदल देना चाहिए, अभी बदल सकते हैं। आदमी की उन्नति क्या है, मनुष्य ने समझ रखा है कि धन ले लें मकान बना लें तो हमारी उन्नति हो गई, इसमें उन्नति कुछ नहीं है, अवनति होगी, पतन होगा। अरे छाती पर पत्थर रखने से कोई उन्नति थोड़ी होती, अपना मकान है वो छाती पर पत्थर है, वो अपने मन में है ना पत्थरों की। मैं तो कभी कभी हंसा भी है, आप लोग मोटर रखते हो तो आप पर मोटर चढ़ती है, मोटर पर तो हम चढ़ते हैं भगत पर, और आप पर चढ़ी रहती रात और दिन ही मोटर चढ़ी रहती छाती पर, खराबी होगी ये वो होगी ऐसे होगी ऐसे होगी। ये पदार्थों को लेकर समझते हैं कि हमने बड़ी उन्नति कर ली, उन्नति क्या कि तुम तो दब गए उनमें, गुलाम बन गए। तो पदार्थ है उनके आप मालिक बनो, आप गुलाम मत बनो। लाखों करोड़ रुपया रहे काम में लो, मर्जी आ वजह ठोकर मार चल दो, चले जाए तो मस्ती में रह दो, हंसो मस्ती से, क्या आए हिरदे ले गए क्या हो गए, तब तो आप मालिक हैं। थोड़े खर्च हो जाए रुपये चले जाए खनखनाहट होती है, आ जाए तो राजी होते, वो माया का दास है गुलाम है, मायापति नहीं है वो। मायापति वही है लेकिन परवाही नहीं, माया के ऊपर असर न पड़े। जिसका असर पड़ता है वो उसका भक्त होता है, भगवान का असर पड़ता है वो भक्त होता है, माया का असर पड़े मायादास होता है। धनपति धनदास है वो धनदास, परंतु वो क्या करें, ये गुलामी अच्छी लगती। विचार कर देखा जाए तो ये स्वयं समझ सकते हैं, परंतु लगे गुलामी अच्छी। अब उनको कैसे समझा बताओ, हमारे तो कोई अक्ल में बात आती नहीं, कठिन बात हो रही है हमारी। प्रत्यक्ष जो दिख रही है आप लोगों को दिख जाए, ऐसी कोई कठिन बात नहीं है, सीधी साधी बात है। आप आए जब लाए नहीं, जाए जो ले जाएंगे नहीं, रहते हुए मर्जी के मुताबिक रख सकते नहीं, परिवर्तन भी मर्जी मुताबिक करते नहीं, फिर भी कहते हमारी है और गुलाम आप उनके बन जाते हैं। आपकी धन संपत्ति हमारी, मेरा मकान मेरी संपत्ति, कहते ऐसा है बन गए उनके गुलाम। ये होश होना चाहिए नहीं, गुलाम मत बनो, आप मालिक बनो, धन रखो खर्च करो, खाओ खर्चो भलेपण खाटो शुक्र तो वह तो हाथे दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथे। इस वास्ते करो काम से उत्साह से मस्ती से रहो, मालिक बन करके रहो। इस वास्ते गुलामी छोड़ो, अरे गुलामी किसी की नहीं करनी है, भगवान की करनी है। पर भगवान के यहां ऐसी विलक्षणता है कि भगवान के प्रेमी भगत होते हैं वो भगवान की भी परवाह नहीं करते, भगवान उसके दास बन जाते हैं। मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। ये धन के दास बने, धन मुकुटमणि आपको नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, ये तो पदलित करेगा। अरे भगवान के भी महाराज ऐसे प्रेमी बन जाए, उनको याद करते रहे, उनके प्रेम में मस्त रहे तो भगवान पीछे अनुप्रजान में हम नित्यम पूए तंगे अणु भी। भगवान कहते हैं ऐसे निष्कंचन भक्त होते हैं उनके पीछे पीछे डोलता हूं,
और उनके चरणों की रज्जी मेरे पर पड़ती है तो भगवान कहते मैं पवित्र हो जाता हूँ। अब बड़ा आश्चर्य की बात, पवित्र आराम पवित्र हो जम मंगलाराम च मंगलम, वे भगवान कह रहे पूए मैं पवित्र होता हूँ उनकी रज्जी से। ये बात समझ में ही नहीं आती है, भागवत का श्लोक कोई मामूली देगा श्लोक नहीं, तो क्या बात है। भगवान पवित्र होते हैं संसार में, भक्तों के द्वारा जो जीव पवित्र होते हैं वे भगवान ही पवित्र होते हैं, क्योंकि भगवान का ही तो शरीर है सभी। खंगवायु अग्निम सलिनम महिंच ज्योतिष सत्वा निदिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम, सबका सब भगवान का शरीर। जो पवित्र होते भगवान ही तो पवित्र होते हैं। इस वास्ते रामगीता में आया यह सेवते माम अगुण गुणात् परम, गुणों से पर अगुण रूप का सेवन करते हैं, हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मक अथवा सगुण रूप का ध्यान करते हैं। तो निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का ध्यान करे उस ध्यान में मस्त रहते हैं, उनके लिए भगवान के सोहम वह मैं ही हूं, मेरा ध्यान भजन करने वाला भगवत मेरा स्वरूप है। नारद जी ने भी लिखा है तस्मिन तज्जन भेदा भवात, भगवान में और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। सो अहम स्वपादांशेणु विस्पृशन पुनादि लोक तृतीय यथा रवि, वो घूमता है तो अपने पैरों के रखने से इस पृथ्वी की रेणुका को पवित्र करता हुआ त्रिलोकी को पवित्र करता है। जैसे यथा रवि, जैसे सूर्य जिस देश में जाता उस देश में प्रकाश हो जाता है, तो ये भौतिक प्रकाश बाहर होता है। संत जो भगवान के प्यारे होते हैं ये जिस देश में जिस प्रांत में जिस विभाग में जावे उन देश के प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंधकार को दूर कर प्रकाश कर देते। तो कितनी विलक्षण महिमा, उनकी महिमा भगवान गाते हुए नहीं थकते, वे भी उनकी महिमा गाते हैं, उनकी महिमा मस्त हो जाते हैं। तो ऐसी भक्ति मिल सकती है सज्जनों इस मनुष्य शरीर में, भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, पहले कैसे ही आचरण रहे हो कैसा ही हुआ हो, सच्चे हृदय से भगवान की तरफ जाते ही पवित्र हो जाता है। क्षिप्रम भो परमात्मा क्षिप्रम, अभी के शूद्राचार्य के लिए क्षिप्रम, इसका नाम क्षिप्रम है। बहुत जल्द तत्काल इतना जल्दी पवित्र हो सकता है क्योंकि भगवान के सन्मुख हो गया ना, सन्मुख हो जीव हो जब ही तो जन्म कोटि अविनाश तब जब सन्मुख गया भगवान सब ठीक हो गया। किसी ने 12 महीना 2 वर्ष सूर्य के दर्शन नहीं किए, गुफा में ही रहा, सूर्य के दर्शन किए ही नहीं, दिन में आया ही नहीं कभी बाहर, पर जिस दिन बाहर आएगा उसी दिन सूरज दिख जाएंगे। ऐसा नहीं था 2 वर्ष नहीं दिखा तो 6 महीना मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसा नहीं। जब सन्मुख हुआ तभी सूरज तो नहीं तैयार, ऐसे कितना ही विमुख रह जाए जब सत्य हृदय से हे नाथ ऐसा कहे उसी दिन हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे भगवान। और एक जन्म देने वाली माँ होती है उसका भी ऐसा हृदय होता है, प्यार करने के लिए उम्र जाता है तो उस तमेव माता जसदा की हमारी माँ, सदा हमारे पिता, सदा हमारे गुरु, सदा हमारे हितैषी, वैसा उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाई, ऐसे प्रभु है। उनके सन्मुख हो जाए तो वो कैसा ही ज्ञान हो, अब उसे सुधराचार हो, पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट क्यों हो, विचार कर ले हे नाथ मैं तो आपका हूं बस आपका ही भजन करूंगा। भगवान कहते हैं साधु रे बस मंतव्य हुक्म दे देते हैं, वो साधु मानो सबसे कह देते हैं साधु रे बस मंतव्य भवधी, आप सब सबको चाहिए उसको साधु मान ले। तो साधु मंतव्य क्या अर्थ हुआ कि साधु उसे आचरण दिखते नहीं, अब भगवान में लगा है आचरण शुद्ध नहीं दिखते उसके, उम्र भर से परिचित है वे आदमी कहते हैं हम जानते हैं, अब ये माला लिए बैठा है भजन करता है कहा करते केदार का अर्घन पहना है हम जानते हैं, हमें उसी पहचानते परंतु भगवान कहते हैं साधु रे मंतव्य, साधु मानना चाहिए तुम्हारे हुक्म देते हैं, आज्ञा है हमारा मंतव्य ही हुक्म है, हुक्म आज्ञा है भगवान की, साधु ने वो संबंध कर दिया कि महाराज कैसे माने, अभी से सुदुराचार आप स्वीकार करते हैं दुराचारी है और उन साधु मान लेना चाहिए किस बात पर मान लें कि सम्यक विवशो तो ईसा उसने निश्चय बढ़िया कर लिया, बस आज से भगवान का भजन करेंगे। उसी क्षण क्षिप्रम भव धर्मात्मा, देरी नहीं लगती। इस बात से भाइयों बहनों, कोई भी भगवान की तरफ चलने में हताश कभी मत होने। जब चाहो तभी भगवान की तरफ चलो। कैसे ही है, पर है तो उसी के ही, तो सन्मुख होते ही वह निहाल हो जाएंगे। परंतु भगवान की तरफ न होकर विमुख रहते हैं तो भगवान कहते हैं उनको फिर मनुष्य शरीर नहीं देता हूं। आसुरी स्वेव योनिषु क्षिपा में और अजस्रम क्षिपा में निरंतर पटकता हूं। चलो भाई, क्यों इतनी शौक बहुत रही है आज की प्रकृति की, तो जाओ भाई इधर जाओ। आसुरी योनि पापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म जन्म में वे प्राप्त आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं। ततो जानते अधमांगति, उससे भी अधमगति नरकों के कुंडों में जाते। महान यातनामय जो कुंड है, उनकी यातना भोगता है, महान दुख भोगता है, कष्ट उठाता है। परंतु कल बात बताई थी ना, भगवान कहते मां अप्राप्ति, अरे मेरे से तो मिला ही नहीं, अरे कहां चला गया तुम। मानो बड़ी चिंता करते हैं, भगवान आश्चर्य करते हैं, मां अप्राप्ति, अरे मेरे मिलने का तेरे को मौका दिया, अवसर दिया, तो कह रहे तुम भगवान की तरफ चलो कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। रात्र दिन कहां मदंदे में लगे, हाय हाय करते हैं, बस पैसा कमा लो, भोग संग्रह कर लो, मान पढ़ाई कर लो, वाह वाह हो जाए, खा जाऊं क्यों करते हैं। कहते भगत नहीं है, भगत भगवान का भजन करें, सत्संग करें, सद्विचार करें, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करें, अपने कल्याण की बात सोचें, भगत नहीं है भगत। अरे मरने लगते हैं तब कहते हाय मैंने कुछ नहीं किया, तो अभी तो भगत नहीं मिलता है, इतने काम करते हो और अंत में ये सब काम कुछ नहीं किया, मैं भर्ती हूं। इतना नहीं धन कमा लिया, इतने मुकदमे कर लिए, इतना छोरा छोरी का संबंध कर लिया, इतने मकान बनाए, इतना ये किया वो किया, क्या किया कि हाय कुछ नहीं किया, अब क्या काम आओ, मृत्यु समय में क्या काम आवे, और वो समय सबको आएगा ही, और उसके लिए तैयारी की नहीं, जो किया वो सबका सब निरर्थक, हाय कुछ नहीं किया। अभी तो वक्त नहीं मिलता है, और ये काम किया कुछ नहीं किया के खाते में खतेंगे सबके सब काम। तो पहले से चेत करना चाहिए मनुष्य को, चेत पीछे होता है, समय जब बीत जाता है तो देखता है कि हमें पहले पता नहीं था, ऐसे समय चला जाएगा, ऐसी मौत आ जाएगी, और ये कुछ काम नहीं आएगा, ये गुड़ गोबर हो जाएगा, जितने मनोर थे सब खत्म हो जाएंगे, कुछ काम नहीं आएंगे। तो कहता भी हमें पहले पता नहीं था। तो भाइयों बहनों अभी सुन लो, अभी पता लगा लो, खूब ठंडे हृदय से गहरी रीति से सोच लो कि ये मृत्यु लोग है, मरने वालों को लोग है पता है कि नहीं, यहां मरने ही मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले रहते हैं, सब ही मरने वाले हैं, और मर जाएंगे तो अर्ब खर्ब लो द्रव्य उदय अस्त लो राज तुलसी, जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, अर्ब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज इतना सूर्य अस्त नहीं होता, पर तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, काम काम आवे, मरने में क्या काम आएंगे, उस समय कुछ नहीं। तो भगवान का भजन ध्यान करते महाराज तो परलोक में पूंजी सदा साथ रहती। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जाने जगह राह बना में धन हो, ये जो धन जिसके पास में है वो माला माल जाता है मोह से। भगवत भजन किया है, अपनी संपत्ति बढ़िया बनाई है, अपना स्वभाव अच्छा बनाया है, देवी संपत्ति का आश्रय लिया है, भगवान को याद किया है, भगवत भजन बना है, उपकार हुआ है, सेवा हुई है सबकी, तो ये पूंजी संग्रहित हो गई असली अपने साथ में चलने की। परंतु महाराज कौन सोचे इधर, भाई पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, बस भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह हो जाए, कुछ नहीं होने का है भाई, धोखा है धोखा है धोखा, मिला ना मुझे कुछ नहीं, हमारा नाम हो जाए, अरे नाम भी चाहते हो तो नाम नाम भी ना रहे, सुना सजाने लो मीरा सुत जायो नहीं, सृष्टि ने मुंडियो कोई। मीराबाई ना तो लड़का हुआ और ना मीराबाई ने किसी को चेला बनाया। आज मीराबाई का कितना नाम आदर से लिया जाता है और उनके पद गाए जाए, मीरा को याद करे तो अंतकरण निर्मल हो जाए, भगवान का प्रेम उमड़ जाए अंतकरण में। मीराबाई की जीवनी, उनका नाम, उनके पद याद करने मात्र से इतनी शुद्धि पवित्रता हो जाती। बात क्या थी, भगवान में लग गई। तो नाम ही चाहो तो इसमें ज्यादा, आराम चाहो तो इसमें ज्यादा, लौकिक संपत्ति चाहो तो आपकी मुसाफरी चलती है, जिसमें रुपया हो जाए तो कहता हमारी मुसाफरी सफल हुई। जिन रुपयों से आप अपनी यात्रा को सफल समझते हो, वे रुपये ऐसे संतों के काम में लग जाए तो धनी आदि समझते कि हमारे रुपये सफल हो गए। जिन रुपयों से आप सफल होते हो, वे रुपये वहां सफल हो जाते। पंचो भी महाराज कृतज्ञ बोध देते, कहते हुए सुनते हुए भी ध्यान नहीं देते, समझते नहीं। जैसे पागल आदमी होता है, वो कुछ समझता ही नहीं, ऐसी दशा हो रही है। पीत्वा मोहमयीम प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। भक्ति ने कहा मोह रूपी मदिरा पी करके और उन्मत्त हो रहे, मत वाले हो रहे, होश नहीं है होश। ये कितना दिन काम चलेगा इन पदार्थों से, इन भोगों से, इन कुटुंबियों से, इन मकानों से, इन इज्जत से, इसकी प्रतिष्ठा से, इतने इतने बड़े पद प्राप्त कर लिए पद से, क्या काम होगा, क्या चलेगा काम, क्या काम आएंगे। तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं का मरना जो है ही, ये तो कोई नई बात है नहीं, ये तो जहां पड़ेगा ही। उस दिन के कोई विचार किया है कि नहीं, उस दिन का सोचो विचार करो। वही चतुर समझदार है जो पहले से सोच ले अपना काम बना ले ठीक तरह से, फिर क्या है, मर जाओ, रहे तो अच्छी बात, न रहे तो अच्छी बात। जिस काम के लिए आया वो काम पूर्ण हो गया, अपना कर लिया, अब निश्चिंत है, निर्भय है, अब निशोक है, निशंक है, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम अधूरा है ही नहीं। गीता ने कहा है कि कृतकृत्यस्त भारत यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्व भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से मेरा भजन करता है वो सर्वविद है। इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मयानक, मैंने खुद ने ये शास्त्र कहा। एतद् उद्वा बुद्धिमान स्यात्, उसको जानने से बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, जानना बाकी नहीं रहता। और कृतकृत्यस्त और करना बाकी नहीं रहता, ना करना बाकी रहता, ना जानना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता। इतनी ही बात, कितना ही करो जानना बाकी, कितना ही पालो फिर पाना बाकी, और कितनी मिल जाएगी फिर मिलना बाकी, और परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाने के बाद ना मिलना रहता बाकी, ना करना बाकी रहता, ना जानना, समाप्ति हो जाती है। मैंने कैसी मिल सुन बात, और मात्र मनुष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भाई हो, बहन हो, पढ़ा लिखो और बिल्कुल अपढ़ो, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट ज्ञान हो, अगर इसको सच्चे हृदय से चाहे तो वो इसको प्राप्त कर ले अपनी इसी उम्र में, थोड़े समय में ऐसी स्वतंत्रता मिली हुई है, ऐसा सुंदर मौका। इस मौके को पा करके भी जो अपना उद्धार नहीं करता, सो परत्र दुख पावहि सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को दोष लगा के कल युग है, क्या करें, कर्मों के तो हमारे भाग्य ऐसा ही है, ईश्वर ने हमें ऐसा ही पैदा किया, मिथ्या दोष। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। मौका बहुत सुंदर मिला है, प्रभु ने कृपा करी है, जो बड़ा अवसर दिया सुंदर। ऐसे अवसर को पा करके सज्जनों अपने विशेष लाभ ले ही लेना चाहिए। केवल लालसा इसमें आप कैसे हैं कैसे नहीं इसका नहीं देखा, आप क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। जितना चाहते हैं वो चाहना एक ही होनी चाहिए, और जितना कर सकते हैं आप कर लीजिए, बस फिर व्यापार। चाहना एक हो जाए परमात्मा की, उसके लिए क्या कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं बचाकर मत रखिए, पूर्ण हो जाएगा। आप भी छोटे बालक से उतना ही चाहते हैं जितना वो कर सकता है, तो ऐसी ईमानदारी और दया आप में भरी है। क्या भगवान की वो दया नहीं है कि ईमानदारी नहीं है क्या, जो आप कर सकते हैं उतना कर लिया, उससे अधिक आशा रखे भगवान आपसे। कि और ज्यादा करो, हमारे पास समय ही नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामग्री नहीं है, जितनी सब लगा दी भगवान पूरा हो जाएगा। ठीक, आप पूरी लगा दो भगवान अपनी पूरी लगा दे, आप अपने को लगा दो भगवान अपने को लगा दे, खुद को ये था माम प्रपद्यंते भजाम्य। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री पूरी मिली है सबको, ये पूरी इस वास्ते कहते हैं कि लोग मानते हैं अधूरी, नहीं तो संतों से सुना है कि पूरी नहीं, इस एक जन्म में आरंभ से करके कई बार भगवत की प्राप्ति कर सकता है, इतना समय इतना मौका इतनी सब सामग्री मिली, तो एक बार प्राप्ति के बाद और क्या करे। तो सामग्री कम नहीं है, समझ कम नहीं है, सामर्थ्य कम नहीं है, सामग्री कम नहीं है, भगवान ने बहुत पूर्ण दे रखी। तो जब मनुष्य शरीर मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो क्या उसकी सामग्री भगवान ने बचा कर रखी, क्या धोखा दिया है कि सामग्री तो हम देंगे नहीं, पूरी प्राप्ति कर लो, ऐसा तो भाई पूरी सामग्री दी है, पूरी सामर्थ्य दी है, पूरी समझ दी है, पूरी पूरी पूरा समय दिया है, कम कम नहीं दिया, सबके पास पूर्ण है। क्यों है पूर्ण? कि भगवान की कीमत तो हो नहीं सकती भी कितनी कीमत है, अब उसी कीमत क्या रही, आपके पास जितनी कीमत है उतनी भगवान की कीमत, अपनी चीज सब दे दो और भगवान की सब ले लो, और अपने आप को दे दो और भगवान खुद को ले लो, अब इसमें कम कीमत कैसे हुई बताओ, हमारी सामर्थ्य कम कैसे हो, हमारी क्या जान में से भगवान को दे दो क्या, भगवान की मानो अपना मत मानो, दे दे क्या है तो भगवान की, रख तो आप सकते नहीं, ले जा सकते नहीं, कर नहीं सकते, अभिमान कर लेते, ये हमारा है हमारी है, ऐसे कर अभिमान करके अपना पतन कर ले तो इतना काम कर सकते, बस यही सामर्थ्य है। और वो अपना न माने, हे ठाकुर जी आप कहते है जी, आपका मैं हूं आपकी है, भगवान के हाँ हाँ मेरी तो है ही। एक लेखक ने भगवान कृष्ण के स्वभाव को बड़ा सुंदर वर्णन करके लिखा, हमें वो लेख बड़ा अच्छा लगा, कि हमारे कन्हैया भोला बहुत है, कन्हैया बहुत भोला, कोई आकर कहे तुम तो मेरी माँ हो, हाँ हाँ मैं तो माँ ही हूं, कोई कहे आप तो हमारे पिताजी हो, हाँ हाँ मैं बाप हूं बेटा, मैं तो बाप ही हूं, कोई कहते कन्हैया तुम तो मेरे लाला हो, मेरे बेटा, हाँ हाँ तुम्हारे बेटे ही हूं मैं, चाहे जो कह दो तैयार करने को, कह दो तुम ये हो मित्र हो मेरे, हाँ तेरा मित्र हूं, ऐसा बोला। श्लोक तो ये था माम प्रति, श्लोक ही टीका है, टीका ऐसे सुंदर लिखी है कि जो कह दो कन्हैया को वही कह दे, तुम बहुत बोला, अब बोले बोले जो कह दो हाँ हाँ मिला दू, मैं तो हृदय से कह दो कि तुम तो मेरे बेटा हो, तुम तो मेरे चेला हो, हाँ गुरु जी मैं तो चेला ही हूं, बड़े गुरु भक्त चेला है भगवान, ऐसा कोई मिलेगा नहीं, अब इतना आगे कर ना बेटा मिलेगा ना चेला मिलेगा ना भाई मिलेगा ना मित्र मिलेगा, तुम तो मिलेगा नहीं दर्शन। अब अनेकों से संबंध जोड़ करके भी काम पूरा नहीं करोगे, अनेकों को छोड़ एक हो जाओ काम पूरा हो जाएगा, तो क्यों आने से माथा पच्ची करो। और भगवान की ये बात बताई गोस्वामी जी महाराज, जो भगवान के भक्त होते हैं ना ये उनकी अटकल जानते हैं, भीतर की बात जानते हैं। ये जो मैं कथा में सुना था कि ये व्यापारी लोग होते हैं ना जो तरह तरह के अधिकार अंग्रेजों से मिलते थे, तो ये अंग्रेजों की उनकी नार जानते थे, क्या करते कि वो जाकर के मैम को डाली देते कि बस यहां से दबेगा ही, उनको देर राजी करके उनसे लिखा लेते अपना, बस अपना व्यापार कर लेते, इस तरह से उनकी नाड़ी का पता लग गया ना भाई, यहां से दबता है वहां से दबा, ऐसे भगवान की भी नाड़ी है, अगर वो नाड़ हाथ आ जाए तो वहां से दबा, चू नहीं करेंगे भगवान, भगवान चू नहीं कर सकते, तो भगवान के भक्त होते हैं ना, अंतर वो सब जानते पोल को, तो क्या पोल है कि एक बाण करुणा निदान की सो प्रिय जाकी गति न आन की, ये बाण है उसकी, और बाण में तो हरेक परवश हो जाए महाराज, आदत पर से लाचार हो जाते, व्यसनी आदमी भी लाचार हो जाता है अपने व्यसन से, तो भगवान भी अपनी बाण से लाचार है, सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं रखेंगे किसी का ही। तो भगवान बहुत अच्छे रहेंगे, एक ही सहारा, एक अनन्य सहारा बस, हम और परवाही नहीं करें, केवल तुम ही एक हो बस, ठीक है, राजी हो जाए ठाकुर जी। अरे कईयों की गुलामी करके भी काम पूरा नहीं होगा, एक से अधूरा नहीं रहेगा, तो फिर बोले क्यों जने जने की गुलामी करें, धन भी चाहिए कि मित्र भी चाहिए।